नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। लाल सागर संकट और वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत के माल निर्यात में 15% की वृद्धि। अमरीका ने कुछ समय के युद्ध विराम के बाद ईरान पर फिर से हवाई हमले शुरू किए। अमरीका की संघीय अदालत ने लेखक सलमान रुश्दी पर हमला करने वाले व्यक्ति को आतंकवाद का दोषी ठहराया। रूस की संघीय सुरक्षा सेवा ने टेलीग्राम के संस्थापक पावेल दुरोव पर आतंकवादी गतिविधियों में सहयोग करने का आरोप लगाया। दुरोव को अंतर्राष्ट्रीय वांछित सूची में डालने की प्रक्रिया शुरू। और राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा में भारत के पैरा एथलीट दिलीप गावित ने स्वर्ण और मोहम्मद बासित ने रजत पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि लाल सागर संकट और वैश्विक उथल पुथल के बावजूद चालू वित्त वर्ष में अब तक भारत के माल निर्यात में 15% की वृद्धि दर्ज की गई है। श्री गोयल ने जेआरडी टाटा स्मारक व्याख्यान में कहा कि बढ़ते भू राजनैतिक तनाव और वैश्विक व्यापार मार्गों में व्यवधान के बावजूद देश का माल निर्यात मजबूत बना हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत का निर्यात देश की आर्थिक बुनियाद की मजबूती को दर्शाता है, जबकि दुनिया भर के व्यवसाय पश्चिम एशिया में संघर्ष और प्रमुख शिपिंग गलियारों में व्यवधान से उत्पन्न अनिश्चितता से जूझ रहे हैं।
We're growing at 7.7% last year.
पिछले वर्ष हमारी विकास दर 7.7% रही, जो दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था है। यह सब तब हुआ जब दुनिया भर में 2 युद्ध चल रहे थे और बहुत ज्यादा अनिश्चितता और भू राजनीतिक संकट का माहौल था। पिछले वर्ष के ज्यादातर समय में अमरीका को किए जाने वाले हमारे ज्यादातर निर्यात पर 50% टैरिफ भी लगा हुआ था। फिर भी 26 मार्च को खत्म हुए साल में हमारे निर्यात में बढ़ोतरी हुई।
In the year ended March 26.
अमरीका ने कुछ समय के युद्ध विराम के बाद ईरान पर हवाई हमले फिर से शुरू कर दिए हैं। ये हमले उस समय किए गए जब ईरान ने इस सप्ताह की शुरुआत में जॉर्डन में एक अमरीकी सैन्य अड्डे पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थीं। एक रिपोर्ट।
अमरीकी केंद्रीय कमान संचकॉम ने कहा है कि सभी मिसाइलों को बीच में ही निष्क्रिय कर दिया गया और किसी तरह के नुकसान की सूचना नहीं है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी बलों पर किसी भी हमले का कड़ा जवाब देने की चेतावनी दी है। इस बीच अमरीका और सऊदी अरब ने इराक में ईरान समर्थित मिलिशिया ठिकानों पर संयुक्त हवाई हमले किए। इस हमले में 20 लोगों के मारे जाने की खबर है। संचकॉम ने कहा है कि 3 दिनों में अमरीकी सैनिकों और सऊदी तेल केंद्रों पर 30 से अधिक ड्रोन दागे जाने के बाद इस अभियान में हथियार डेपो और रसद स्थलों को निशाना बनाया गया। सऊदी अरब ने भी कहा है कि उसने अपने पूर्वी प्रांत में तेल केंद्रों को निशाना बनाकर हमला करने वाले कई ड्रोन को रोका है और इसके लिए इराक में ईरान समर्थित समूहों को जिम्मेदार ठहराया है। विश्व दर्पण के लिए जया भारती।
ईरान के साथ जारी संघर्ष के बीच अमरीका के मिसाइल भंडार में कमी आने की खबर है। एक थिंक टैंक CSIS की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 महीनों में अमरीका ने बड़ी संख्या में पैट्रियट और थार्ड वायु रक्षा मिसाइलों का इस्तेमाल किया। इससे इन मिसाइलों का भंडार काफी घट गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि संघर्ष शुरू होने से पहले अमरीका के पास करीब 2,200 पैट्रियट और 452 थार्ड मिसाइलें थीं। अब पैट्रियट मिसाइलों की संख्या घटकर 827 से कम, जबकि थार्ड मिसाइलों की संख्या 278 से भी कम रह गई है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमरीका की संघीय अदालत ने लेखक सलमान रुश्दी पर हमला करने वाले व्यक्ति को आतंकवाद के आरोपों में दोषी ठहराया है। रुश्दी को उनके उपन्यास द सैटेनिक वर्सेस को लेकर दशकों से जान से मारने की धमकियां मिल रही थीं। जूरी ने हादी मटार को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद सहित सभी आरोपों में दोषी पाया। 28 वर्षीय मटार पहले से ही अगस्त 2022 में एक एम्फीथिएटर के मंच पर हुए हमले में हत्या के प्रयास में न्यूयॉर्क की जेल में 25 साल के लिए कैद में है। संघीय दोष सिद्धि में आजीवन कारावास की सजा भी शामिल है। लेखकों की सुरक्षा पर बात करने वाले रुश्दी पर दर्शकों के सामने 15 बार चाकू से हमला किया गया। वे गंभीर रूप से घायल हो गए और उनकी दाहिनी आंख की रोशनी चली गई। रूस के सरकारी मीडिया ने कहा है कि रूस की संघीय सुरक्षा सेवा FSB ने टेलीग्राम के संस्थापक पावेल दुरोव पर आतंकवादी गतिविधियों में सहयोग करने का आरोप लगाया है। दुरोव को अंतर्राष्ट्रीय वांछित सूची में डालने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।
संघीय सुरक्षा सेवा का आरोप है कि टेलीग्राम उन चैनलों, चैट और बॉट्स को हटाने में विफल रहा जिनका कथित तौर पर यूक्रेनी खुफिया एजेंसियों द्वारा रूस के अंदर हमले की योजना बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। अधिकारियों का ये भी दावा है कि टेलीग्राम की डेटिंग सेवा का इस्तेमाल रूसियों को आतंकवादी गतिविधियों के लिए भर्ती करने में किया गया था। बताया जा रहा है कि उनकी गिरफ्तारी के लिए अंतर्राष्ट्रीय वारंट जारी किया गया है। रूसी कानून विशेषज्ञों के अनुसार दुरोव को इंटरपोल के माध्यम से प्रत्यर्पण की कानूनी प्रक्रिया के तहत उनकी अनुपस्थिति में गिरफ्तार किया जा सकता है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से फरहत नाज।
जापान की आबादी लगातार घट रही है। जापान के गृह मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में जापानी नागरिकों की आबादी पहली बार 12 करोड़ से नीचे आ गई है। 1 जनवरी तक जापानी नागरिकों की संख्या करीब 11 करोड़ 97 लाख दर्ज की गई, जो पिछले साल की तुलना में लगभग 9,17,000 कम है। यह 1968 के बाद सबसे बड़ी वार्षिक गिरावट है। वहीं जापान में रहने वाले विदेशी नागरिकों की संख्या बढ़कर 40 लाख से ज्यादा हो गई है, जो अब तक का सबसे अधिक स्तर है। सरकार के प्रयासों के बावजूद देश में घटती जन्म दर के कारण जनसंख्या में लगातार कमी आ रही है। जापान के 47 प्रांतों में सिर्फ टोक्यो में स्थानीय आबादी बढ़ी है। विदेशी नागरिकों को शामिल करने पर जापान की कुल आबादी करीब 12 करोड़ 37 लाख है, जो पिछले साल की तुलना में लगभग 5,63,000 कम है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 के 10वें संस्करण के थीम का शुभारंभ किया। एशिया के सबसे बड़े डिजिटल प्रौद्योगिकी मंच का 10वां संस्करण 7 से 10 अक्टूबर तक नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। दूरसंचार विभाग और सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित IMC 2026 में वैश्विक प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ, दूरसंचार ऑपरेटर, नवाचार, स्टार्टअप, निवेशक, शोधकर्ता और नीति निर्माता भारत के डिजिटल परिवर्तन के अगले चरण को आकार देने के लिए एक साथ काम करेंगे। इस अवसर पर श्री सिंधिया ने कहा कि सीमाओं के बिना विस्तार थीम वैश्विक लाभ के लिए दूरसंचार, नवाचारों, प्रौद्योगिकियों और डिजिटल समाधानों को राष्ट्रीय सीमाओं से परे ले जाने की भारत की महत्वाकांक्षा को दर्शाता है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पैरा एथलेटिक्स के पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा के फाइनल में स्वर्ण और रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। भारत के दिलीप महादुगावित ने 10.71 सेकंड का समय लेकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया, जबकि मोहम्मद बासिल ने 10.83 सेकंड के साथ रजत पदक हासिल किया। भारत 3 स्वर्ण, 9 रजत और 3 कांस्य पदकों सहित कुल 15 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलीप महादुगावित को स्वर्ण पदक और मोहम्मद बासित को रजत पदक जीतने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय पैरा एथलेटिक्स ने खेल उत्कृष्टता का एक यादगार अध्याय लिखा है। उन्होंने कहा कि दोनों पैरा एथलीटों का ऐतिहासिक स्वर्ण रजत पदक जीतना भारतीय पैरा एथलेटिक्स के लिए मील का एक पत्थर है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। लाल सागर संकट और वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत के माल निर्यात में 15% की वृद्धि। अमरीका ने कुछ समय के युद्ध विराम के बाद ईरान पर फिर से हवाई हमले शुरू किए। अमरीका की संघीय अदालत ने लेखक सलमान रुश्दी पर हमला करने वाले व्यक्ति को आतंकवाद का दोषी ठहराया। रूस की संघीय सुरक्षा सेवा ने टेलीग्राम के संस्थापक पावेल दुरोव पर आतंकवादी गतिविधियों में सहयोग करने का आरोप लगाया। और राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा में भारत के पैरा एथलीट दिलीप गावित ने स्वर्ण और मोहम्मद बासिर ने रजत पदक जीता। और इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।